अध्याय 15, चीनी साम्यवादी दल का उदय, राइज ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यह अध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के प्राध्यापक मणिभूषण के द्वारा लिखा गया है। पृष्ठ संख्या 229। चीनी साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, संक्षेप में सीसीपी, की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। हालांकि साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत बंद कमरों में वार्ता, वाद विवाद व परिचर्चा आदि के रूप में हुई, पर धीरे धीरे इस आंदोलन ने गति पकड़ी तथा इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। माओ तजतुंग, जहूद, चोउ अनलाय, चन तुसिउ, लियु साओछी व सियांग चिंग ई आदि नेताओं ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, परंतु इन नेताओं के व्यक्तित्व से अधिक उनके द्वारा निर्धारित नीतियों और उद्देश्यों ने जनता को प्रभावित और प्रोत्साहित कर साम्यवादी आंदोलन की ओर आकर्षित किया। सीसीपी ने यह तय किया था कि उसका उद्देश्य देश को साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से छुड़ाने के साथ साथ चीनी जनता को वहां के शासक वर्ग के निरंकुश आधिपत्य से भी मुक्ति दिलाना होगा। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। सैद्धांतिक रूप से 1912 ईस्वी के संविधान के अनुसार चीन एक गणतंत्र था, परंतु विभिन्न राजनीतिक तथा सैनिक दलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के फलस्वरूप वहां इतनी उथल पुथल एनार्की मची रही कि वह विदेशी दबाव का सामना करने की स्थिति में नहीं रहा। पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावात्मकता के प्रति चीनियों में निराशा बढ़ती जा रही थी, और ऐसे माहौल में पेरिस शांति सम्मेलन ने उन्हें बिल्कुल निराश कर दिया। इस सम्मेलन की शर्तों के तहत शांतुंग में जो आर्थिक इस सम्मेलन के शर्तों के तहत शांतुंग में जो अधिकार जर्मनी को उपलब्ध थे वह चीन को वापस लौटाने की बजाय जापान को सौंप दिए गए। ऐसे समय में सोवियत संघ एक पर्याय के रूप में सामने आया, जहां साम्यवादियों ने अपने जार के निरंकुश शासन के साथ साथ पश्चिमी साम्राज्यवादियों को भी उखाड़ फेंका था। मार्च 1919 ईस्वी सोवियत सरकार ने चीनियों का विश्वास जीतने के लिए मंचूरिया में जार सरकार द्वारा किए गए अनाधिकृत प्रवेश को समाप्त कर दिया। जार द्वारा लगाए गए करों से चीनी नागरिकों को मुक्त कर दिया। चीन और मंगोलिया में देशोत्तर विशेषाधिकार एक्स्ट्रा टेरिटोरिटी राइट्स रद्द कर दिए तथा जार की सरकार द्वारा चीन में स्थित रूसी दूतावास में रखे गए सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। यह सभी एकतरफा निर्णय 1919 ईस्वी की कारखाना घोषणा में शामिल थे, जिसके द्वारा सोवियत रूस ने लोगों को विदेशी पूंजी की सैनिक ताकत से आज़ाद करने जो पूर्व और खास तौर पर चीनी लोगों का दमन कर रही थी, टू फ्री द पीपुल फ्रॉम द योक ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ फॉरेन मनी विच वाज क्रशिंग द पीपुल ऑफ द ईस्ट एंड प्रिंसिपली द पीपुल ऑफ चाइना के अभियान का भी ऐलान किया। फलस्वरूप चीन की 10% शिक्षित जनसंख्या का एक भाग मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हुआ। चीन में मार्क्सवाद के विकास की दिशा में मई चतुर्थ आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुकाम था। इस आंदोलन में शहरी आबादी के विभिन्न वर्गों जैसे विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, मजदूरों तथा बुर्जुआ वर्ग के लोगों के एक साथ साम्राज्यवादी ताकतों के शोषण के खिलाफ जन प्रदर्शनों में भाग लिया। प्रेस के विकास तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से नए विचारों के प्रसार तथा उनकी स्वीकृति में सहायता मिली। विशेष तौर पर शिक्षित शहरी वर्गों ने इस नए विचारों को ज्यादा आत्मसात किया। इसमें जो अधिक अतिवादी थे वे मार्क्सवाद की तरफ झुके। कई मार्क्सवादी रचनाओं का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। अध्ययन सभाओं की स्थापना की गई तथा मार्क्सवाद को पढ़ने और उसका प्रचार करने के लिए कई पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं। इस प्रकार मई चतुर्थ आंदोलन के नेताओं में से ही कुछ लोग चीन के प्रारंभिक साम्यवादी नेता बने। 1921 ईस्वी में सीसीपी की स्थापना उस नई जागरूकता का परिणाम थी जो प्रगतिशील विचारों तथा मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के बीच स्थापित संबंध से पैदा हुई थी। पृष्ठ संख्या 231। जिस सामाजिक संदर्भ में मार्क्सवाद का उदय हुआ उसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि जहां सामान्य जनता बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, वहीं छोटी संख्या में ऐसे विशिष्ट वर्ग के लोग भी थे जो काफी ऐसो आराम से रह रहे थे। अनाज के व्यापारी, साहूकार, जमींदार तथा प्रशासनिक अधिकारी किसानों का इतना शोषण और दमन करते थे कि अधिक से अधिक किसान खेतिहर मजदूर होते जा रहे थे। जनसंख्या में वृद्धि से जमीन पर भार तो बढ़ ही रहा था, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में मजदूरी विशिष्ट वर्ग के उन लोगों की इच्छा पर निर्भर करती थी जिनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण था। कुछ किसान संगठन जमींदारी के खिलाफ इतना लड़ रहे थे, लेकिन उनकी राजनीतिक जागरूकता काफी सीमित थी। मजदूर वर्ग हालांकि संख्या में काफी छोटा था, परंतु उसका राजनीतिकरण आसानी से हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि जितने बड़े औद्योगिक केंद्र थे, वे सभी चीन के प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी थे। सभी औद्योगिक मजदूरों का लगभग आधा हिस्सा शंघाई में था, शेष कुआंगचोउ, हानखोउ, वुहान, हांगकांग तथा काओलून जैसे केंद्रों में थे, जो साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव में थे। इन केंद्रों में कम मजदूरी, लंबे कार्य दिवसों तथा दयनीय माहौल के कारण मजदूरों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ता था। 1918 ईस्वी में 25 हड़तालें हुई। मई चतुर्थ आंदोलन के दौरान ये मजदूर अतिवादी बुद्धिजीवियों के संसर्ग में आए, जिसके फलस्वरूप उसकी राजनीतिक जागरूकता काफी बढ़ी जिसके फलस्वरूप उनकी राजनीतिक जागरूकता काफी बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस से लौटे हुए 28,000 शिक्षित मजदूरों ने भी मजदूर वर्ग तथा चतुर्थ मई आंदोलन को उग्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। साम्यवादी समूहों तथा इन अतिवादी मजदूरों ने इस संदर्भ में स्वयं को एक दूसरे का प्राकृतिक सहयोगी पाया। इसी सहयोग की परिणति सीसीपी की स्थापना में हुई। प्रारंभिक काल, द अर्ली फेज। 1920 ईस्वी की गर्मियों में चन तुसियू ने शंघाई में प्रथम साम्यवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। ली ताचोउ ने पेचिंग में दूसरे समूह की स्थापना की और इसके बाद चीन के विभिन्न हिस्सों में अनेक साम्यवादी समूहों का गठन हुआ। इन मार्क्सवादी समूहों की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य मार्क्सवादी सिद्धांत तथा चीन के मजदूर वर्ग की समस्याओं के बीच संबंध स्थापित करना था। इन समूहों की इस चिंता का पता हमें इनके द्वारा प्रकाशित अखबारों तथा पर्चों से चलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख थे, श्रम संसार, द वर्ल्ड ऑफ लेबर, शंघाई, मजदूर की आवाज, द वॉइस ऑफ लेबर, पेचिंग, श्रमिक, द वर्कर्स, कुआंगचोउ, कार्यरत महिलाएं, वुमेन एट वर्क, कुआंगचोउ आदि। एक और पंद्रह जुलाई 1921 ईस्वी के बीच पुलिस से बचते हुए विभिन्न मार्क्सवादी समूह पहले शंघाई में लड़कियों के एक रिहायशी स्कूल में और बाद में चिरचियांग में मिले। 7 क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 साम्यवादियों तथा कोमिंतर्न के एजेंट मारिंग की इस बैठक को चीनी साम्यवादियों का प्रथम अधिवेशन, द फर्स्ट कांग्रेस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट माना जाता है। हालांकि पुलिस के दमन के कारण इस बैठक में न तो चन तुसियू भाग ले सके और न ही ली ताचोउ, पर ली ताचोउ को सीसीपी के संयुक्त संस्थापक घोषित किया गया तथा चन तुसियू को पार्टी का प्रथम महासचिव घोषित किया गया। मार्क्सवाद, लेनिनवाद के सिद्धांतों तथा बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित सीसीपी में यह विश्वास पैदा हुआ कि एक औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए देश में भी समाजवाद की स्थापना हो सकती है, अर्थात एक ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है जिसमें किसी वर्ग का शोषण न हो, जिसमें निजी संपत्ति नहीं होगी तथा जहां राजनीतिक व्यवस्था कायम करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करेगी। मार्क्सवाद के विचारों से प्रभावित सीसीपी मजदूर वर्ग को ही सबसे अधिक क्रांतिकारी सामाजिक वर्ग समझती थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अपने जंजीरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। इट हैड नथिंग टू लूज बट इट्स चेन। मजदूर वर्ग को निजी संपत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए यह वर्ग एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना चाहेगा जिसमें हर व्यक्ति अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त करेगा। अतः सीसीपी ने अपने ऊपर मजदूरों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली ताकि उनके द्वारा समाजवादी क्रांति लाई जा सके। सीसीपी ने यह महसूस किया कि रूस की तरह चीन में भी पहले सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना जरूरी था और इसके लिए किसानों और राष्ट्रीय बुजुर्गवा वर्ग के साथ मजदूरों की साझेदारी अनिवार्य थी, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था का पतन इनके लिए भी आवश्यक था। फिर भी बाद में सीसीपी का मुख्य ध्यान मजदूर वर्ग के आंदोलनों की तुलना में किसानों की ओर अधिक रहा, जो आगे चलकर उनकी शक्ति का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुए। बोल्शेविक क्रांति ने यह दर्शाया था कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का पूरा विकास जरूरी नहीं है। अतः लेनिन ने 1920 ईस्वी के कुओमिंतर्न में औपनिवेशिक चीन की आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक खास नीति निर्धारित की। उसके अनुसार उपनिवेशवाद और समांतवाद को उखाड़ फेंकना प्रथम आवश्यकता थी, जिसके लिए सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ प्रजातांत्रिक क्रांति में बुर्जुआ वर्ग की साझेदारी में भाग लेना होगा। सीसीपी ने कई मजदूर संगठनों की स्थापना की तथा उनके आंदोलनों और हड़तालों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद की। मजदूरों के बीच राजनीतिक जागरूकता का पता उनकी नई मांगों तथा नए मुद्दों से लगता है। मजदूर संगठन सचिवालय, लेबर यूनियन सेक्रेटेरिएट की स्थापना की गई। मजदूर संगठन का अधिवेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ तथा जहाजरानी, रेलवे, कोयला खानों, कारखानों तथा रेशम उद्योग आदि में अनेक हड़तालें हुई, जिनमें 30,000 से 40,000 मजदूरों तथा छोटे शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। परंतु अधिकतर हड़तालें योद्धा सामंतों के इलाके में हुई, जिन्होंने अपनी सेनाओं द्वारा बड़ी क्रूरता से इन हड़तालों का दमन कर दिया। मजदूर संगठनों को बंद कर दिया गया, हड़तालों को तोड़ दिया गया और मजदूरों को बड़ी पैमाने पर हत्याएं की गई, जिसके फलस्वरूप साम्यवादियों तथा मजदूर वर्ग के आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो गया। इस दमन ने सीसीपी तथा मजदूरों को यह महसूस करवाया कि उन्हें साझेदारों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। एक शक्तिशाली साझेदार किसान वर्ग हो सकता था, परंतु कुआंग चोऊ के अतिरिक्त साम्यवादियों ने कहीं भी किसानों और किसान आंदोलनों को संगठित करने का प्रयास नहीं किया। 1920 ईस्वी में लेलिन द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व सुन यात सेन की कुओमिंतांग पार्टी करती थी, के साथ साझेदारी पर अधिक बल दिया गया, ताकि साम्राज्यवाद और सामंतवाद का जोरदार मुकाबला किया जा सके।